आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय गति। ये कक्षा छठी के विषय विज्ञान का 10वां अध्याय है और क्योंकि ये अध्याय हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था, इसलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने इस अध्याय में पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। बच्चों, पिछली क्लास में सबसे पहले हमने ये बात की थी कि गति होती क्या है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी वस्तु या फिर कोई जीव या फिर कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद, कुछ समय के बाद जो अपने स्थान को बदलते हैं, अपने स्थान में परिवर्तन दिखाते हैं, तो हम उसी को गति कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई जीव एक जगह से दूसरी जगह चल करके जाएं, दौड़ करके जाएं, रेंग करके जाएं या कैसे भी जाएं, तो हम ऐसे में ये कहेंगे कि वो व्यक्ति, वस्तु या फिर जीव गति कर रहे हैं। और इसका और भी सही परिभाषा जो है वो भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि कुछ समय के बाद अगर कोई वस्तु, व्यक्ति या जीव अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, जिस स्थिति में वो पहले था उससे बदल करके दूसरी स्थिति में वो आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु, व्यक्ति या जीव गति कर रहा है। और जब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो स्थिति में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि स्थान में परिवर्तन हुआ है। स्थिति में हर एक चीज आ जाती है, पोजीशन केवल उसकी बात नहीं हो रही है, पर यहाँ पर सिचुएशन की बात की जा रही है, स्थिति की बात की जा रही है। कि मैंने आपको जैसे बताया कि कोई वस्तु जो होती है, जैसे लट्टू का उदाहरण हमने पढ़ा था कि लट्टू जो होता है वो घूमता है, जब आप लोग उसको घुमा देते हैं रस्सी से तो वो घूमता है। तो उस वक्त लट्टू जो है, जरूरी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, लेकिन जब वो घूम रहा है उस वक्त भी हम यही कहेंगे कि वो लट्टू गति कर रहा है, क्योंकि जब वो घूम रहा है तो हर एक सेकंड के बाद उसकी जो पोजीशन है और उसकी जो सिचुएशन है वो बदलती रहती है, उसकी स्थिति बदलती रहती है। पहले जिस स्थिति में वो था उसके थोड़ी देर बाद वो दूसरी स्थिति में आ जाता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि लट्टू जब घूम रहा होता है तो वो भी उस वक्त गति कर रहा होता है। और साथ में हमने उदाहरण पढ़ा था घड़ी का भी, कि घड़ी जो टिक टिक करके गोल गोल घूमती है उसकी सुई, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि जो हमारी घड़ी की सुई है वो गति कर रही है, क्योंकि हर एक सेकंड के बाद उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। वो पहले जहाँ पर थी वो बदल जाती है और दूसरी जगह पर वो आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी घड़ी की सुई जो है वो भी गति करती है। साथ में हमने पेंडुलम की भी बात की थी कि कुछ कुछ घड़ी ऐसी होती है जिसमें एक धातु की चीज लटकती होती है और वो आगे पीछे होती रहती है, उसको हम लोग पेंडुलम कहते हैं। तो पेंडुलम की जो गति करने का तरीका होता है आगे पीछे, इसमें आगे पीछे करने से वो घड़ी जो है, पेंडुलम की घड़ी जो है वो रहेगी तो दीवार के ऊपर ही, वो दीवार से हट करके कहीं जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी उस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसमें पेंडुलम आगे पीछे हो रहा है वो भी एक प्रकार की गति करने की प्रक्रिया है। तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु, व्यक्ति या फिर कोई जीव अपनी स्थिति को बदल देते हैं कुछ देर के बाद, तो हम कहते हैं कि वो गति कर रहे हैं। तो इतना समझ लेने के बाद कि गति करने का उदाहरण क्या होता है, कैसे समझा जाए गति को, उसके बाद हमने ये समझा था कि गति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ वस्तु जो हैं वो गोल घूम करके गति दिखाते हैं, या फिर कुछ वस्तु जो होते हैं वो पेंडुलम की तरह आगे पीछे होकर के गति दिखाते हैं, कुछ वस्तु जो होते हैं वो सीधी लाइन में चल करके गति दिखाते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की गतियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ा था और ये मैंने आप लोगों को गतिविधि एक के माध्यम से समझाया था। गतिविधि एक में आपको क्या करना था, आपको अपनी कुछ ऊंचाई पर जाना था अपने स्कूल में, और उसके बाद खिड़की से आपको एक पत्थर गिराना था नीचे। ये आपको ध्यान से करना है कि किसी छोटे बच्चे को लगे ना या फिर किसी को भी चोट ना लगे उससे। तो जब आप लोग पत्थर गिराएंगे किसी ऊंची जगह से, तो आप ये देखेंगे कि वो जो पत्थर है वो एक सीधी रेखा में गति करता है, वो एक सीधी रेखा में चल के जाता है और जमीन पर जाके गिर जाता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है जिसमें वस्तु सीधी रेखा में चल रही होती है तो हम उसी को सरल रेखीय गति कहते हैं। और इसका उदाहरण केवल यही नहीं है कि आप ऊंचाई से पत्थर गिराएंगे तो उसकी गति जो है वो सरल रेखीय गति होगी, इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि आप लोग खुद अगर किसी सीधी रोड पर चलते हैं तो उस वक्त भी आप सरल रेखीय गति कर रहे होते हैं, या फिर कोई साइकिल सीधी रोड पर चल रही हो, बाइक चल रही हो, कार चल रही हो, तो वो सब की सब भी सरल रेखीय गति कर रही होती हैं। या फिर आप लोग अगर फिसल पट्टी जो होती है उस पर आप लोग फिसल करके उससे नीचे आते हो तो उसमें भी हम कहेंगे कि आप सरल रेखीय गति कर रहे हो, क्योंकि आप एक सीधी फिसल पट्टी जो है उसी पर से फिसल के सीधा नीचे आते हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होते हो, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि आप सरल रेखीय गति कर रहे हो। या फिर जो 100 मीटर की रेस होती है उसमें जो आप लोग दौड़ रहे होते हो तो सीधे ही आप लोग दौड़ रहे होते हो, तो उसमें भी आप यही कहोगे कि आप सरल रेखीय गति कर रहे होते हो। या फिर ट्रेन जब सीधी पटरी पर चल रही होती है तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि ट्रेन जो है वो सरल रेखीय गति कर रही है। तो कई सारे उदाहरण हो सकते हैं सरल रेखीय गति के, और इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो तो हम ये कहेंगे कि वो सरल रेखीय गति कर रही है। उसके बाद आगे हम लोगों ने वृत्ताकार गति के बारे में पढ़ा था, इसको हमने गतिविधि 2 के माध्यम से पढ़ा था, गतिविधि 2 है पेज नंबर 86 पर। इसमें आपने क्या किया था, आपने एक पत्थर लिया था, या फिर मैंने आपको कहा था कि आप माचिस का खाली डिब्बा भी ले सकते हैं, और उसको आपने रस्सी से बांध दिया था। उसके बाद आपने रस्सी को पकड़ करके जोर जोर से घुमाया था तो आपका माचिस का डिब्बा या फिर पत्थर जो है वो गोल गोल घूम रहा था, क्योंकि आपने उसको रस्सी से बांधा हुआ था। तो इस प्रकार की गति में जब कोई वस्तु गोल गोल घूम रहा हो तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु जो है वो वृत्ताकार गति कर रहा है। वृत्ताकार का मतलब ही होता है गोल, तो कोई भी वस्तु अगर गोल पथ में घूम रहा हो तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु वृत्ताकार गति कर रहा है। यहाँ पर आप लोग चित्र भी देख सकते हो पेज नंबर 86 पर। इसमें आप देखो ये जो बच्चा है वो धागे से पकड़ करके उस वस्तु को घुमा रहा है, तो उसमें वो जो वस्तु है वो एक गोल पथ में घूम रही है, गोल रास्ते में घूम रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है वो वृत्ताकार गति कर रही है। तो जब भी कोई वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है, गोल पथ में घूमती है, तो वो वृत्ताकार गति कर रही होती है। इसके भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। जब आप ही लोग हैं, मान लीजिए आपने जमीन पर एक सर्कल बना दिया, एक गोला बना दिया चौक से, और आप उस चौक के चारों ओर घूमने लग गए, तो भी आप लोग यही कहोगे कि आप लोग भी क्या कर रहे हो, वृत्ताकार गति कर रहे हो। या फिर आप लोगों को सूरज के बारे में पता होगा और धरती के बारे में पता होगा कि धरती जो होती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उस वक्त वो भी एक गोल पथ में घूम रही होती है, तो वो भी उस वक्त वृत्ताकार गति कर रही होती है। उसके बाद वृत्ताकार गति के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने आवर्त गति के बारे में पढ़ा था। आवर्त गति में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि आप लोगों ने पेंडुलम का मोशन देखा होगा, पेंडुलम किस तरीके से हिलता है ये देखा होगा, कुछ कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें पेंडुलम लगा हुआ होता है, और उस पेंडुलम की गति कैसे होती है, आगे पीछे आगे पीछे, जो पेंडुलम है वो कुछ देर के बाद आगे आता है, फिर थोड़ी देर के बाद पीछे आता है, फिर वापस से आगे आता है, फिर पीछे चला जाता है। इस प्रकार की जो गति होती है जिसमें कोई वस्तु आगे पीछे एक निश्चित समय के बाद हो रहा हो, उसको ही हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आप लोगों ने अगर पेंडुलम नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिया गया है पेज नंबर 87 में। सबसे पहला जो घड़ी है उसमें आप लोगों को एक धातु की चीज लटकी हुई दिखाई दे रही है ना, उसी को पेंडुलम कहते हैं। और ये जो पेंडुलम है यही आगे पीछे होता है साइड साइड में, ये कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी फिर से दाएं जाता है, फिर बाएं जाता है, एक समय के बाद ये वापस अपनी प्रक्रिया को दोहराता रहता है और ये दाएं बाएं होता रहता है। तो इस प्रकार की गति को ही हम लोग आवर्त गति कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल इसी की जैसी सेम गति होती है, जब आप लोग झूले पे झूल रहे होते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार की गति हो रही होती है, झूला भी आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे ऐसे हो रहा होता है, तो उसमें भी हमारा झूला जो है वो आवर्त गति कर रहा होता है। यहाँ पर आप लोगों को चित्र में भी दिखाया गया है पेज नंबर 87 में कि बालक जो है वो झूले के ऊपर झूल रहा है, तो झूला जो उसका है वो आगे और पीछे हो रहा है, और इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं, जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी आगे पीछे होने की प्रक्रिया को दोहराते हैं, उसी को आवर्त गति कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोगों ने पढ़ा था कंपन गति के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कंपन गति के बारे में, और यहाँ पर आपको ये मैंने गतिविधि 3 के माध्यम से बताया था। गतिविधि 3 जो है वो है पेज नंबर 87 पर। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको एक धागा लेना था और आपको और आपके दोस्त को मिलकर के ये गतिविधि करनी थी और दोनों को उस धागे को बहुत टाइटली पकड़ना था, बहुत कस के तान के पकड़ना था। उसके बाद उसको तान के पकड़ने के बाद आपको बीच से उसमें उंगली से उसको नीचे खींच देना था और छोड़ देना था। तो वो जो आपका धागा होगा वो ऊपर नीचे बड़ी तेजी से होने लगेगा, उसमें कंपन हो जाएगी। तो उस प्रकार की गति को ही कंपन गति कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपन गति जो होती है ये एक प्रकार से आवर्त गति का उदाहरण होती है, क्योंकि आवर्त गति में भी वस्तु जो है वो आगे पीछे हो रही होती है। लेकिन मैंने आपको अंतर बताया था कंपन गति के बीच में और आवर्त गति के बीच में। अंतर क्या था? अंतर ये था कि जो कंपन गति होती है उसमें जो वस्तु आगे पीछे हो रहा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी आगे पीछे हो रहा होता है। और आवर्त गति में क्या होता है कि वस्तु जो होती है वो कुछ समय के बाद थोड़ा सा धीमे धीमे आगे पीछे हो रही होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आवर्त गति का उदाहरण ही होता है कंपन गति, क्योंकि इसमें भी वस्तु आगे पीछे हो रही होती है लेकिन बहुत तेजी से हो रही होती है। और कंपन का सीधा सिंपल ही मतलब है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग मीनिंग है। जैसे आप लोगों ने, जब आप लोगों को ठंड लगती है तो आपकी बॉडी भी कैसे हिलने लग जाती है, तो वो आगे पीछे हो रही होती है ना आपकी बॉडी भी, तो उसमें भी कंपन गति ही हो रही होती है उस टाइम पे। तो कंपन गति का उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया था। उसके बाद आगे हम लोगों ने घूर्णन गति के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में हम लोगों ने गतिविधि 4 के माध्यम से पढ़ा था। बहुत ईजी गतिविधि थी ये। इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने अपनी साइकिल ली थी और साइकिल को स्टैंड पे लगा करके जब आपने पैडल को घुमाया था तो आपकी साइकिल का पीछे वाला पहिया गोल गोल घूमने लग गया था। तो इस प्रकार की गति में जब कोई वस्तु अपनी धुरी पर घूमता है गोल गोल तो उसी को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। इसके अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं, लट्टू जब अपनी धुरी पर घूमता है तो वो भी घूर्णन गति कर रहा होता है, जो कुम्हार का चाक होता है जब वो घूमता है तो वो भी घूर्णन गति कर रहा होता है, और जब हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है तो वो भी उस वक्त घूर्णन गति कर रही होती है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर अंतर बताया था घूर्णन गति के बीच में और जो सर्कुलर मोशन होता है, वृत्ताकार गति जो होती है उसमें अंतर है। उसमें अंतर ये है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रही है तो उसका मतलब केवल ये है कि वो एक गोल पथ में घूम रही है, जरूरी नहीं है कि किसी धुरी के चारों ओर घूम रही हो या फिर ऐसा कुछ है। लेकिन अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उस वक्त जरूरी है कि वो किसी धुरी पर ही घूम रही है। जब उसकी धुरी घूमेगी तो वो वस्तु गोल घूमेगी, अगर धुरी होगी ही नहीं तो वो वस्तु गोल कैसे घूमेगी। तो घूर्णन गति में धुरी की आवश्यकता होती है लेकिन वृत्ताकार गति में धुरी की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही अंतर होता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था दूरी के मापन के बारे में कि दूरी को किस तरीके से मापा जाना चाहिए। उसके पहले मैंने आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि कोई ऐसा मोशन, कोई ऐसी गति जिसमें वस्तु आगे भी हो रही हो, इसका मतलब है कि सरल रेखीय गति भी कर रही हो साथ में घूर्णन गति भी कर रही हो, ऐसा आप कहाँ देखते हैं? तो ऐसा आप लोग अपनी साइकिल में या फिर बाइक में देखते हैं। उसमें क्या होता है कि बाइक जो होती है वो सरल रेखीय गति कर रही होती है क्योंकि वो आगे की ओर बढ़ रही होती है, सीधी रोड पर चल रही होती है, लेकिन उसका जो पहिया होता है वो घूर्णन गति कर रहा होता है। तो ऐसी कोई वस्तु जो एक ही समय में दो प्रकार की गति दिखा रहा हो उसका उदाहरण हो सकता है बाइक या फिर आपकी साइकिल। उसके बाद आगे हम लोगों ने दूरी को मापने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि पुराने ज़माने में दूरी को कैसे मापा जाता था। पुराने ज़माने में लोग अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके या फिर पैरों का इस्तेमाल करके, कदमों का इस्तेमाल करके जो चीज़ें होती थी, वस्तुएँ होती थी या ज़मीन होता था उसको मापते थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर गतिविधि 5 की थी पिछली क्लास में, इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने अपनी साइंस की पुस्तक ली थी, विज्ञान की पुस्तक ली थी और उसको आप लोगों ने अपनी उंगलियों से मापने की कोशिश की थी। सभी बच्चों ने अपने अपने अलग अलग जो उनकी उंगलियों का साइज है उस हिसाब से उसको मापने की कोशिश की थी किताब को। तो जब आपने चेक किया था तो उंगलियों से जब आपने बुक को मापा था तो उसमें सबकी अलग अलग उंगलियों के माप होने की वजह से सबने अलग अलग वैल्यू बताई थी कि मेरी उंगलियां, जो मान लीजिए कि किसी ने बोला था कि 4 उंगलियों की किताब है, किसी ने बोला था 5 उंगलियों की किताब है, तो क्योंकि सबकी बॉडी का साइज अलग अलग है, उनके हाथ का जो साइज है वो भी अलग अलग है, इस वजह से उन्होंने बुक का साइज भी अलग अलग बताया था। लेकिन जब आप लोगों ने अपनी बुक को स्केल से मापा था तो उस वक्त सेम साइज मिला था आप लोगों को, क्योंकि स्केल जो होता है कोई छोटे बच्चे के पास हो या फिर किसी बड़े बच्चे के पास हो, स्केल का साइज सेम ही होता है। तो जब आप लोग किसी वस्तु को स्केल से मापते हैं तो आपको सबको सेम ही वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि अगर हम किसी के हाथ से मापते हैं या पैर से मापते हैं तो उसमें त्रुटि होने के जो होते हैं चांसेस वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आकार अलग अलग होती है तो उस हिसाब से वो लंबाई भी अलग अलग बता सकते हैं, तो उसमें त्रुटि हो सकती है कि कोई वस्तु रखी हुई है और उसका माप कोई पहला व्यक्ति करता है जिसका हाइट छोटा है तो वो अपने हिसाब से बताएंगे कि 5 उंगलियों की उनकी वो वस्तु है, दूसरा व्यक्ति जब उसी वस्तु को मापेगा तो उसका मान लीजिए कि 4 ही उंगलियों में हो जाएगा, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसी वजह से ये जो तरीका था जिसमें उंगलियों से वस्तु की लंबाई मापी जाती थी ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था, बिल्कुल भी सटीक नहीं था, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो और दूसरा तरीका था जो हमने गतिविधि 6 के माध्यम से पढ़ा था, गतिविधि 6 है पेज नंबर 89 पर, इसमें आपने देखा था कि लोग जमीन के ऊपर किस तरीके से मापते थे, कदमों से मापा करते थे, कदमों से मापने भी ये गड़बड़ हो जाती है कि जो वस्तु होते हैं उसकी लंबाई को मापने के लिए व्यक्ति के पैर का इस्तेमाल किया जाता है, कदमों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन व्यक्ति जो होते हैं उनकी हाइट अलग अलग होती है, इस हिसाब से उनके पैरों का साइज भी अलग अलग होता है, उसी वजह से कोई भी चीज को जब आप मापते हैं तो उसकी आप लोग साइज अलग अलग बताएंगे क्योंकि आपके पैरों की साइज अलग अलग है। तो इसी वजह से किसी भी वस्तु की लंबाई को मापने का तरीका पैरों से मापने का तरीका भी सही नहीं है, उसमें भी गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पुराने जमाने में किस तरीके से मापा जाता था। उसके बाद आज की क्लास को अब हमको शुरू करना है और आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है लंबाई के मात्रक के बारे में। तो जैसा आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबकी साइज अलग अलग होती है, आकार जो होती है अलग अलग होती है, इस वजह से जब उसको मापा जाता था तो सब लोग अलग अलग लेंथ बताते थे, आप लोग सब लोग बताते थे कि मेरे 4 कदमों की लंबाई है, दूसरा बच्चा बोलता था कि मेरे 5 कदमों की लंबाई है, तो इसमें अंतर होता था, सब में अंतर होता था। इसीलिए बाद में जाकर के एक ऐसा तरीका ढूंढा गया जो कि स्केल है उसको ढूंढा गया और उसमें उसके मात्रक को भी ढूंढा गया, और उसको बनाने की वजह से, स्केल को बनाने की वजह से और लंबाई के मात्रक को बनाने की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग उस वस्तु की लंबाई जो है बिल्कुल सेम ही बताएंगे, कोई भी अलग अलग नहीं बताएगा। तो लंबाई के मात्रक के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, जब आप लोग बताते हैं कि कोई वस्तु जो है इसकी लंबाई है 12, तो आप लोग 12 क्या बताते हैं, 12 सेंटीमीटर बताते हैं या फिर मीटर बता सकते हैं या फिर मिलीमीटर बता सकते हैं। तो ये जो मात्रक होता है वो होता है किसी भी वस्तु की किस यूनिट में आपने मापा है। जैसे मान लो आपकी खुद की हाइट है तो आपसे कोई बोले कि आपकी कितनी हाइट है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मेरी हाइट है 120 क्या 120 सेंटीमीटर। तो जिस तरीके से मापा जाता है किसी वस्तु को उसी को मात्रक कहते हैं, और मात्रक जो है पूरे विश्व में सेम होता है और इसीलिए इसको SI मात्रक कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कहते हैं, क्योंकि ये हर एक देश में सेम होता है। और ये जो होता है हमारी लंबाई का मात्रक, SI मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। हम किसी भी वस्तु को सबसे पहले मीटर में मापते हैं और उसके बाद मीटर की छोटी वैल्यू जो होती है, छोटी हिस्सा जो होती है वो होती है सेंटीमीटर। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसका मतलब एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए, ये तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बाकी मिली का मतलब ही होता है कि 10^-3, मतलब कि हजारवा हिस्सा, किसी भी वस्तु का हजारवा हिस्सा मिली कहलाता है। जैसे आप लोग मिली लीटर भी बोलते हो ना कि किसी वस्तु की जो वॉल्यूम है तो आप लोग कहते हो कि मिली लीटर है, तो इसका मतलब है कि एक लीटर का हजारवा हिस्सा जो है वो मिली कहलाता है। तो मीटर का एक हजारवा हिस्सा जो है वो मिली मीटर कहलाएगा। मिली का मतलब है कि 1/1000, 1/1000, और सेंटी का मतलब होता है 1/100। तो इसीलिए आप लोगों को समझना है कि एक मीटर का 100वां हिस्सा जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर का क्या मतलब होता है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है कि 1000 बार आप 1 मीटर को बार बार ऐड करते जाओ, मतलब 1000 × 1, तो आप लोगों को मिल जाएगा 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो आप लोगों को ये अलग अलग वैल्यूज याद करके रखनी है ताकि आपसे कभी कोई पूछे तो आप सही आंसर दो। उसके बाद बच्चों, अगर आप लोगों को कोई सीधी चीज मापनी है, कोई सीधी रखी हुई चीज है उसको आपको मापना है, तो आप लोग बहुत आसानी से स्केल से उसे माप सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन दी गई हो या फिर कोई वस्तु ऐसी है जो टेढ़ी मेढ़ी आकार की है, तो अगर आपको उसकी लंबाई मापनी है तो आप कैसे मापेंगे? तो उसको आप लोग भी माप सकते हैं। आप लोग एक धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें क्या करेंगे कि जो वस्तु टेढ़ी मेढ़ी है उसके चारों ओर, उसके इर्द गिर्द आपको उस धागे को लगा देना है, और उसके बाद उस धागे की लंबाई को आप स्केल पे माप लेंगे, तो इससे आप लोगों को उस टेढ़ी मेढ़ी लाइन की लंबाई भी पता चल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखो गतिविधि 7 में आपको यही करने को कहा गया है। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 90 पर। इसमें सबसे ऊपर आप लोगों को एक चित्र दिया गया है 10.7। इसमें आपको एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दी गई है, क ख इसका नाम है, लाइन का नाम है क ख, और आपको इसी को मापना है। तो जब आप लोग इसको मापोगे तो आप लोग एक धागे का इस्तेमाल कर सकते हो। धागे को क ख लाइन के चारों ओर, उसके इर्द गिर्द आप लोग धागे को लगा दो, और उसके बाद धागा जो है जितना भी लंबा आपका आएगा उसको ले लो और स्केल पर उसको माप लो, तो आप लोग पता चल जाएगा आपको कि एक वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है उसकी लंबाई कितनी है। और इसी के साथ में आपका अध्याय खत्म हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा कर लेंगे। पहले प्रकार के जो प्रश्न है उसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है वृत्ताकार गति का उदाहरण क्या है। वृत्ताकार गति का उदाहरण आप लोगों को बताना है, तो इसका उदाहरण है कोहलू के बैल की गति जो होती है, वो गोल गोल घूमता है ना, गोल पथ में घूमता है, इसलिए कोहलू के बैल की गति को आप लोग वृत्ताकार गति का उदाहरण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती है। तो पेड़ से फल गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऐसा नहीं है कि पेड़ से एक बार फल गिरा तो दूसरी बार फिर से गिरेगा ही गिरेगा, तो इसीलिए आप लोग पेड़ से फल टूटने की प्रक्रिया को कह सकते हैं कि ये जो गति होती है ये ऐसी नहीं होती है कि निश्चित समय के बाद दोबारा से इसको दोहराया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है एसआई मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक क्या है। तो आप लोगों को पता है मीटर है, तो मीटर को टिक कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कंपन गति का क्या उदाहरण है। तो कंपन गति का आप लोग उदाहरण बता सकते हैं वीणा के तार की जो गति होती है, क्योंकि वीणा के तार को प्लग कर दिया जाता है, उसको खींच दिया जाता है, तो वो ऊपर नीचे बड़ी जल्दी जल्दी होती है और इसी वजह से उसमें से आवाज आती है। तो वीणा के तार की गति जो होती है, वीणा एक वाद्य यंत्र होता है, एक उसमें से गीत बजाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वीणा जो है जो सरस्वती माता लेकर के बैठती हैं, तो वीणा का जो तार होता है उसकी गति जो होती है उसमें कंपन गति होती है, और कंपन गति का उदाहरण जो है वो वीणा के तार की गति के रूप में आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद अगले प्रकार के जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है घड़ी के पेंडुलम की गति कौन सी गति होती है। तो पेंडुलम की गति आवर्त गति का उदाहरण होती है, तो यहाँ पर आप लोग आवर्त गति लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वाहन के पहिए की गति कैसी होती है, उसमें घूर्णन गति होती है, तो आप लोग यहाँ पर घूर्णन गति लिख सकते हैं। सीधी सड़क पर चलने पर वाहन की गति कैसी होती है, सरल रेखीय गति होती है। उसके बाद अगला है चौथा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद अगले प्रकार के प्रश्न है कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको सुमिलान करना है। 2 कॉलम दिए गए हैं, उसमें आपको अलग अलग बातें लिख करके दी गई हैं, आपको उनको मैच कराना है, मिलान कराना है। पहला है लिखा है कॉलम 1 में आवर्त गति, और आवर्त गति से मिलती जुलती बात क्या है कि कुम्हार का जो चाक होता है वो जब घूमता है तो वो कौन सी गति दिखाता है, वो गति दिखाता है वृत्ताकार गति, तो ये नहीं होगा। दूसरा होगा इसका झूले की गति जो होती है वो आवर्त गति दिखाती है। आवर्त गति में वस्तु जो है वो आगे पीछे होता है एक निश्चित समय के बाद, तो जो झूले की गति होती है इसमें ऐसा ही होता है, तो आप लोग आवर्त गति को झूले की गति से मिलान करा देंगे। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती है, गोल पथ में घूमती है, तो हम कहते हैं कि वो वृत्तीय गति कर रही है, तो इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कुम्हार की जो चाक है वो जब गति करती है तो वो गोल गोल घूमती है, तो इसीलिए वो वृत्तीय गति करती है, तो आप लोग वृत्तीय गति का मिलान करा देंगे कुम्हार द्वारा चाक को घुमाना इससे। उसके बाद अगला है सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति में आप लोग लिख सकते हैं कि गेंद जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उस वक्त वो सरल रेखीय गति कर रही होती है। चौथा है कंपन गति। कंपन गति में आप लोग सितार के तार की गति जो होती है उसमें कंपन गति हो रही होती है, तो इन दोनों का आप मिलान करा देंगे। उसके बाद अगले प्रकार के प्रश्न है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, छोटे छोटे आंसर लिखने आप लोगों को। पहला प्रश्न है सरल रेखीय गति के 2 उदाहरण लिखिए। बहुत आसान है, आप लोग कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। जब कोई कार सीधी रोड पर चल रही होती है तो वो सरल रेखीय गति कर रही होती है, जब आप लोग सीधी रोड पर दौड़ रहे होते हो तो आप भी सरल रेखीय गति कर रहे होते हो, जब कोई ट्रेन सीधी पटरी पर चल रही होती है तो वो भी सरल रेखीय गति कर रही होती है। कोई भी दो उदाहरण आप लोगों को लिख देने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, गति किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गति करने का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद, कुछ भी समय के बाद, जब कोई वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि वो गति कर रहा है। और इसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहला सरल रेखीय गति जो होती है वो है, फिर वृत्ताकार गति है वो है, उसके बाद अगली आवर्त गति है, उसके बाद कंपन गति है, उसके बाद घूर्णन गति है। ये सारी की सारी गतियां जो हैं इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। नाम लिखना है आपको, उनके बारे में नहीं लिखना है, आप लोगों को केवल गति का जो परिभाषा है वो लिखना है, उसके बाद अलग अलग प्रकार की गतियों के नाम आपको लिख देने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, इसमें आपको बताना है गतिशील लट्टू और कोल्हू के बैल की गति में क्या अंतर है। तो गतिशील लट्टू में आप लोगों ने देखा हुआ है कि लट्टू जब घूमता है तो वो एक धुरी के चारों ओर घूमता रहता है, उसको, उस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। लेकिन कोल्हू के बैल जब घूम रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक गोल पथ में घूम रहे होते हैं, वो उसी जगह पर किसी धुरी पर, मतलब आप चक्री की तरह नहीं घूम रहे होते हैं, वो गोल पथ में घूम रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो वृत्ताकार गति कर रहे हैं। अगर लट्टू भी अपनी धुरी पर एक ही सेम जगह पर गोल गोल घूमने के बजाय वो किसी गोल पथ में घूमे तो वो भी वृत्ताकार गति करेगा। इसका उदाहरण आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो अंतर, कि आप लोग मान लो आप एक जगह पर खड़े हो जाओ और एक चक्री की तरह घूमने लग जाओ उसी जगह पर खड़े खड़े, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, उस वक्त आप लोग घूर्णन गति कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग गोल पथ में दौड़ने लग जाओ उस वक्त आप कर रहे हो वृत्ताकार गति। तो दोनों में अंतर यही होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब कोई वस्तु एक ही धुरी के ऊपर वहीं पर रुक करके गोल गोल घूम रहा होता है तो उस वक्त क्या कर रहा होता है, वो उस वक्त वो घूर्णन गति कर रहा होता है। लेकिन अगर किसी गोल पथ में वो घूम रहा है तो उस वक्त वो वृत्ताकार गति कर रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि लट्टू जो है वो एक ही जगह पर अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन कोल्हू का बैल जो होता है वो गोल पथ में घूमता है, गोल रास्ते में घूमता है। इसीलिए कोल्हू का बैल जो है वो वृत्ताकार गति कर रहा है, लट्टू जो है वो घूर्णन गति कर रहा है। यही अंतर है इन दोनों की गतियों में। उसके बाद चौथा प्रश्न है, जब आप झूला झूलते हैं तो झूला किस प्रकार की गति करता है। जब आप लोग झूला झूल रहे होते हो तो झूला आपका आगे पीछे हो रहा होता है, तो उस वक्त वो आवर्त गति कर रहा होता है। उसके बाद अगले प्रकार के जो प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। इनमें से पहला प्रश्न है कि वक्र रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात की जा सकती है, विधि का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों ने लास्ट गतिविधि, गतिविधि 7 के बारे में पढ़ा था। इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आप लोगों को टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी कि वक्र रेखा की लंबाई पता करनी हो तो उसके लिए आप लोग एक धागे का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि धागा जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मुड़ सकता है। तो अगर आपके पास कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा है उसकी लंबाई आपको पता लगानी है तो आप लोग धागे की मदद से उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के इर्द गिर्द उस धागे को लगा दो, उसके बाद जितना भी धागा आपका आ रहा है उसको पकड़ लो और उसको आप लोग एक सीधे स्केल से माप लो तो आपको एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा की लंबाई पता चल जाएगी। इस प्रक्रिया से आप लोग पता कर लेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आवर्त गति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो आवर्त गति में क्या होता है कि वस्तु जो होती है अपनी स्थिति को एक निश्चित समय के बाद दोहराती है, जिस जगह पे वो थी वो थोड़ी देर बाद घूम फिर के वहां पर आ जाती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पेंडुलम की गति देखी है, उसमें क्या होता है, पेंडुलम पहले आगे होता है, थोड़ी देर बाद पीछे चला आता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस से वो आगे आता है। तो इसमें क्या होता है कि वो आगे दोबारा से आ गया थोड़ी देर बाद, तो इस प्रकार की गति में जिसमें वस्तु जो है अपनी स्थिति पर वापस से आ जाता है थोड़ी देर बाद, उसी को आवर्त गति कहते हैं। झूला झूलने की गति जो होती है, जब लोग बैठ जाते हो झूले पर और झूला आगे पीछे होता है, उसमें भी वो आवर्त गति ही कर रहा होता है। तो ये दो उदाहरण आप लोग लिख सकते हो आवर्त गति के उदाहरण के रूप में, एक पेंडुलम का उदाहरण लिख सकते हो, दूसरा आपके झूले का उदाहरण भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, वर्तमान में पार्क में खेल से संबंधित कई प्रकार के उपकरण होते हैं, उनमें कौन कौन सी गति होती है। तो अलग अलग अगर झूले लगे होंगे तो उसमें गति भी अलग अलग होती है। जैसे मान लो अगर ये वाला झूला है जिसमें आप लोग आगे पीछे होते हो, लटका हुआ जो झूला होता है उसमें जब आप बैठ जाते हो तो वो आगे पीछे होता है, तो इसमें आवर्त गति हो रही है। या फिर वो अलग जो एक झूला होता है जिसमें आप लोग खड़े हो जाते हो और वो गोल गोल घूमता है, वो चक्री वाला झूला जो होता है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, उसमें वो एक गोल पथ में आपको घुमा रहा है, इसका मतलब आप लोग वृत्ताकार गति कर रहे हो। या फिर मान लो अगर आप लोग फिसल पट्टी पे बैठ जाओ और फिसल के नीचे आ जाओ, तो उस वक्त वो क्या कर रहा है, उस वक्त वो आपको सरल रेखीय गति करा रहा है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार की गति होती है, अलग अलग सारे जो झूले होते हैं उन सब में अलग अलग गति हो सकती है। तो यही आप लोगों को करना है, ये आप लोगों का मान लो एक होमवर्क सा हो गया कि जब आप लोग जाओगे खेलने तो उस वक्त आप जब झूले पे झूलो तो आपको ये भी पता लगाना है कि ये किस प्रकार की गति कर रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो आपको आपस में डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं, बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया है। और इसी के साथ में आपका अध्याय भी खत्म हो गया। आपको क्या करना है, आपको ये अध्याय पूरा फिर से एक बार पढ़ लेना है। कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।